ये आकाशवाणी है। अब आप रत्ना पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया और उनसे उनके कारोबार के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की महिला शक्ति ने हमेशा समाज और देश के भविष्य के निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए उन सभी क्षेत्रों को खोलने की दिशा में काम कर रही है जो कभी उनके लिए प्रतिबंधित थे। श्री मोदी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के अलावा उनकी सुरक्षा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार अक्षम्य अपराध है और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्याय को अधिक से अधिक सरल और स्पष्ट बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी को न्याय प्रदान करने के लिए न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रक्रियाएं न्याय को कठिन बना देती हैं। प्रधानमंत्री कल जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लैटिनम जुबली समापन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए देश में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से काफी फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कल आकाशवाणी में मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देश में काफी ऐसे काम हो रहे हैं जिनसे विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने 23 तारीख को देशवासियों ने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस और चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया। श्री मोदी ने स्पेसटेक स्टार्टअप गैलेक्साई के सदस्यों के साथ बातचीत भी की। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष लाल किले से उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं से राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि इसका युवाओं पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में वैश्विक व्यापार नेताओं के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश मुद्दे पर चर्चा की। श्री पीयूष गोयल सिंगापुर में आज होने वाले दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार बैठक में भारत और सिंगापुर के बीच निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया और तमाम क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की बात की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज होने वाले दूसरे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गई हैं। वित्त मंत्री का स्वागत सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत में उच्चायुक्त साइमन वोंग और सिंगापुर में भारत की उप उच्चायुक्त पूजा टिल्लू ने किया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि आम चुनाव कराने का फैसला राजनीतिक है और बांग्लादेश के लोग ही तय करेंगे कि ये अंतरिम सरकार कब तक सत्ता में रहेगी। उन्होंने बांग्लादेश टेलीविजन पर एक संबोधन में कहा कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी होंगे, जिनके लिए प्रशासन, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, चुनावी प्रणाली और कानून व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएंगे। प्रोफेसर यूनिस ने कहा कि चुनाव का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार, लूटपाट और सामूहिक हत्या के खिलाफ जिम्मेदार राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत करना है। विदेश नीति के बारे में उन्होंने कहा कि हम सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे और आपसी विश्वास और सहयोग बांग्लादेश की नीति की आधारशिला होगी। इससे पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने अंतरिम सरकार से जल्द चुनाव कराने के लिए स्पष्ट योजना की मांग की है, साथ ही राजनीतिक पार्टियों के साथ विचार विमर्श के बाद आवश्यक सुधार करने की भी अपील की है। त्रिपुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं को बहाल करने के लिए दूरसंचार विभाग ने कड़ी मेहनत की है। बीएसएनएल, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन समेत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की संयुक्त कोशिशों से 54% से ज्यादा नेटवर्क फिर से चालू किया जा चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।